ओम शांति, ओम शांति। प्यारे बाप दादा के इशारों को प्रैक्टिकल लाइफ में अपनाने वाले, बाप दादा की आशाओं की दीपक ब्राह्मणों के दिलों को जीतने वाली इस विश्वविद्यालय की सीनियर आदरणीय राजयोगिनी गीता दीदी जी हम सभी के बीच में उपस्थित है। सभी एक हाथ की ताली से आदरणीय राजयोगिनी गीता दीदी जी आपका इस सभा में बहुत बहुत तह दिल से हार्दिक स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। जैसे आपका नाम है वैसे ही आप अपनी जीवन से ईश्वरीय कार्य में बाबा का नाम रोशन करने वाले हैं। आप भारत में शुरू में जहां भी आध्यात्मिक मेले हुए वहां राजयोग शिविर द्वारा बाबा का मैसेज पहुंचाया, अनेक आत्माओं की दुआएं आपके पास प्राप्त हैं। शुरू में आपने गुजरात में 7 साल अनेक सेवा केंद्र खोलने के लिए आप निमित्त बने हैं। पिछले 14 साल आपने गुजरात भावनगर सब जोन संचालिका के रूप में ईश्वरीय सेवाएं दी हैं। ज्ञानसौर एकेडमी मनर दादी जी के साथ रहकर के 16 साल वहां के पूरे एकेडमी के कार्यक्रमों की जिम्मेदारी आपने 16 साल तक संभाली है। साथ ही साथ में नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस को भी आप घोषित करते हैं। जी जागरण आस्था संस्कार चैनलों पर भी आपके आध्यात्मिक लेक्चर घर बैठे अनेक आत्माएं लाभ लेती हैं। आप बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज विंग के नेशनल हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हैं। आप ऐसी बाबा की अमूल्य रतन आदरणीय राजयोगिनी गीता दीदी जी आज आप मधुबन शीश महल इस टॉपिक पर प्रकाश डालेंगी। आदरणीय राजयोगिनी गीता दीदी जी,
ओम शांति। हम सभी बाबा के बच्चे ब्रह्मा मुख वंशावली सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण प्रतिवर्ष बाबा के बेहद घर मधुबन में आते हैं। क्योंकि मधुबन बाप दादा की कर्म भूमि है, तपोभूमि है, वरदानी भूमि है, और इस भूमि में आकर हम अपने लक्ष्य को, अपने पुरुषार्थ को रिफ्रेश करते हैं। क्योंकि यहाँ के कण कण में हर शय में बाबा के चरित्र समाये हुए हैं। यहां शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, मातेश्वरी जगदम्बा और हमारी दादियों की ये कर्म भूमि है, चरित्र भूमि है। मधुबन को शीश महल कहते हैं। जैसे शीश महल में जिस दिशा में हम देखते हैं उस दिशा में हमें अपना वास्तविक स्वरूप दिखाई देता है। क्योंकि ये सत्य भूमि है, पवित्रता की भूमि है और इन महान आत्माओं ने यहां तपस्या की है। इसलिए प्रतिवर्ष हम मधुबन आते हैं और अपनी यथार्थ स्वरूप को यहां देखते हैं। हमें अपनी कहां तक हमने प्रगति की है कहां तक हमने अपनी कमियों को खत्म किया है और हमें अपना कहां तक पुरुषार्थ करना है खुद का स्वदर्शन हमें हो जाता है। अपने अपने सेंटरों में हम आपस में ही एक दो को देखते हैं और अपने आप को नापते रहते हैं। लेकिन यहां हमारे जो आदर्श हैं बड़े हैं, जो हमारे रोल मॉडल हैं, वो हमें दिखते हैं। अब तक अनेक दादियों को हमने देखा है, दीदियों को भी देखा है और अपने बड़े भाइयों को, दादाओं को भी देखा है। भल हम वैरायटी यहाँ आते हैं, लेकिन दादियों ने, दीदियों ने, दादाओं ने हमें बहुत प्यार से स्वीकार किया है, प्यार से चलाया है, और हमेशा हमें सही मार्गदर्शन दिया है। हमें अपने बड़ों का बहुत चिंतन, गहरा मंथन और अपने जीवन से उन्होंने सही गाइड किया है। तो ये हमें यहाँ ही मिलता है, बाबा का बेहद परिवार यहाँ ही रह सकता है, पालना मिलती है, और निरंतर ज्ञान योग के क्लासेस हमें मिलते हैं। इस बेहद परिवार में हम स्वयं को भी देखते हैं, और अपना सही नापदंड हमें मिलता है। तो हम ज्ञान की सत्यता कहाँ तक समझ पाए हैं, कितने निश्चय से हम पढ़ते हैं, पढ़ाई में कहाँ तक प्रवीण हुए हैं, परिपक्व हुए हैं, यहाँ सबके साथ पढ़ते हुए हम अपनी पढ़ाई, निश्चय, लगन को देख सकते हैं। जैसे बाबा ने हमें मुरली में कहा, रविवार की अव्यक्त वाणी में बाबा ने हमें कहा कि तुम्हारे मन का वीडियो बाबा के पास है, मन के अंदर तो बहुत खजाने भरे हुए हैं, परंतु तुम्हारे चेहरे और चलन में नहीं दिखाई देते हैं। अब तुम्हें ये ज्ञान, गुण और शक्तियों का खजाना तुम्हारे कर्म में, चेहरे में, चलन में और वाणी में अब दिखाई दे। तुम कोटों में कोई और कोई में भी कोई हो, ऐसी सिलेक्टेड आत्माएं हो तो तुम भी नंबर वन होने चाहिए। ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले हरेक ब्राह्मण बच्चे नंबर वन होने चाहिए। तो हम अपने आप को देख सकते हैं, बाबा ने साकार रूप में जो मुरलियां चलाई, बाप समान दादियों ने वो हमें सुनाई, बाबा के ये मधुर महावाक्य, ये सत्य महावाक्य हमें दिल से लगते हैं, क्योंकि जो उनका स्वरूप बने हैं बाबा मम्मा और दादियों ने वो हमें यहां सुनाए। तो ये हमें तीर लगे हैं और यहां हम सभी बातों से फारिग होकर देह संबंधों, दुनियावी कारोबार, इन सभी से फारिग होकर यहां आते हैं और संगठन में बैठकर सुनते हैं, तो हम अपने आप को अच्छी तरह से देख सकते हैं। हम अपना यथार्थ दर्शन कर सकते हैं। हमें अपने अंदर की कहां तक हम परफेक्ट बने हैं, कोई भी डिफेक्ट रही है नहीं रही है, हम अच्छी तरह से रियलाइज कर सकते हैं। जैसे कल भी बाबा ने कहा कि तुम्हें यहां फीलिंग आती है, महसूस होता है कि ओहो बाबा, आपने हमें क्या से क्या बना दिया, आपने हमें कितना सुख दिया, आपने हमारे पर कितना उपकार किया, जब गृहस्थ व्यवहार की सांसारिक बातों से फारिग होते हैं और प्रैक्टिकल में योगी पवित्र ब्राह्मणों का हमें संग मिलता है तो ये रियलाइजेशन हमें बहुत अच्छी तरह से आते हैं। तो ये है मधुबन शीश महल जिसमें हम अपनी अंदरूनी स्थिति को अच्छी तरह देख सकते हैं। हमारी मंजिल क्या है, कहाँ तक हम पहुंचे हैं और हमारे पुरुषार्थ की रफ्तार क्या है, ये तीनों चीज हमें देखनी है। अशरीरीपन, निराकार विदेही स्थिति हमें प्राप्त करनी है। अंत में हमें कुछ भी याद न आवे, एक बाबा ही याद रहे, ये हमारी मंजिल है। परंतु घर ग्रस्त में रहते, नौकरी धंधे में रहते, सेवा कारोबार में रहते, अगर बाबा की याद नहीं रहती है, अमृत वेला योग एक्यूरेट नहीं होता है, तो हम कारण बता देते हैं, कि इन इन कारणों से योग नहीं लगा। परंतु यहां कोई ऐसा कारण नहीं है, दिन रात योग होता है, यहां शांति का वातावरण है, पवित्र आत्माओं का संग है, यज्ञ का ब्रह्मा भोजन है, जब कोई कारण नहीं है तो हमारा योग क्यों नहीं लगा। क्योंकि हमारी बाबा से इतनी लगन नहीं है, हम बाबा के प्यार में लवलीन नहीं हैं, हम योग में एकाग्र नहीं हैं, हमें अपना कारण यहां दिखाई देता है। तो हमें कैसे लगन में मगन होना है, लव में लीन होना है, और योग में एकाग्र होना है। बाबा ने मधुबन किस लिए बनाया, ऐसे नहीं कि हमें जो यहाँ नया जो कुछ बनता जाता है वो ही देखने के लिए आना है। कितने कैंपस बनते हैं, भवन बनते हैं, कितने नए नए लेजर शो बनते हैं, सिर्फ ये देखकर खुश नहीं होना है, परंतु बाबा ने बेहद का घर शुरू से बाबा ने मुरलियों में कहा है कि तुम्हें आकर एकांत में बैठना है, इन पहाड़ियों पर जाकर तुम्हें तपस्या करनी है, ज्ञान की रूह रिहान करनी है। तो ये बेहद का मधुबन घर अपनी स्थिति बनाने के लिए बाबा ने बनाया है, तो हमें उसी लक्ष्य से यहां आना है और अपना आपस में रू रिहान करनी है, एकांत में बैठकर चिंतन करना है और इस प्राकृतिक वातावरण में बहुत सुंदर तपस्या करनी है। हमारे बड़े भाई बहने हमें अपने चिंतन मंथन की बातें सुनाते हैं, फिर भी काफी टाइम हमें फ्री मिलता है, हम इस फ्री समय में अच्छी तरह से मनन चिंतन मंथन करके अभ्यास करें, अनुभव करें। हम देखते हैं कि यहां रहने वाले भाई बहने मुरली पूरी होते ही उठने लगते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी अपनी सेवा देखनी है, अपना वैरायटी डिपार्टमेंट का कारोबार देखना है, तो वे उठने लगते हैं। कर उनको देख कर आए हुए पार्टियों के भाई बहने भी उठने लगते हैं। प्रोग्राम आप लोगों के लिए बनता है, अनाउंसमेंट आपके काम की होती है, परंतु फिर भी भाई बहने उठने लगते हैं। अगर उस महत्व को हम समझें कि हमारे लिए प्रोग्राम बने हैं, क्लासेस होने हैं, हमारे लिए अनाउंसमेंट हो रही है। हम बैठे सुने और उसका लाभ लें। बाहर निकल के आपस में मिलते हैं, बातें करते हैं, परंतु हमें वो नहीं करना है। आज बाबा का संदेश वतन का जो आता है वो भी सुनने के लिए अनाउंस करना पड़ता है कि आप सब बैठो सुनो। तो ये बातें दिखाती हैं कि हम ज्ञान कितनी गहराई से समझे हैं, बाबा के संदेश को कितना महत्व देते हैं और कितना प्रोग्राम्स जो हमारे लिए रचे जाते हैं उनको महत्व देते हैं। इससे आपको अपना ही स्वरूप, जीवन में ज्ञान को, पढ़ाई को कितना हम महत्व देते हैं कि नहीं देते हैं, ये आपका फोटो चित्र आपको ही अच्छी तरह दिखाई देता है। मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, ये भूमि ही दर्पण है, यहाँ का प्रोग्राम ही हमें समझना है। हम कितना महत्व देते नहीं देते, कितनी तपस्या हम करते हैं, तो ये हमारा मुखड़ा हमें ही दिखाई देता है। हम क्लास में कितना रेगुलर और पंक्चुअल आते हैं, हम नहीं आते हैं। पूरे क्लास में अंत तक भाई बहने आते रहते हैं, तो हमारी पढ़ाई में कितनी रुचि है, हम निश्चय और लगन से कितनी पढ़ाई करते हैं, ये सब हमें दिखाई देता है। यहाँ तो कोई हमें काम नहीं है, कोई जिम्मेवारी नहीं है, भाइयों को कोई नौकरी धंधे पर जाना नहीं है, बहनों को कुछ खाना बनाना नहीं है। अगर हम जो भी सेवा धारी भाई बहने आते हैं अपनी सेवा एक्यूरेट समय से कर देंगे, कंप्लीट हो जाएगी, तो हम क्लास भी अच्छी तरह कर सकते हैं। हमारी रुचि कितनी है, इंटरेस्ट कितना है, वो हमें खुद को ही दिखाई देता है। तो ये बेहद के संगठन में हमारा त्याग कितना है, वैराग्य कितना है, त्याग कितना है, तपस्या कितनी है, क्योंकि यज्ञ वैराग्य त्याग और तपस्या के या त्याग तपस्या सेवा के मंत्र पर रचा गया है। तो यहां भी ये हमें चेक करना है, सत्य ज्ञान वैराग्य लाता है। जब आंतरिक वैराग्य आता है तो हम त्याग सहज कर सकते हैं। एक त्याग है हमारी बुराइयों का त्याग, हमारे अवगुण कमजोरियों का त्याग, और दूसरा त्याग है बाबा के लिए, बाबा के यज्ञ के लिए, बाबा की सेवा के लिए। हमें अपना सुख, आराम, मौज अपना तन मन धन कहां तक हम त्याग कर सकते हैं। जो सेवा में आते हैं उनको अपना ये देखना है, हमें अपना सुख, आराम, मौज ये भी बाबा के सेवा के लिए, यज्ञ के लिए त्यागना है। तन मन धन कितना हम बाबा की सेवा में लगाते हैं। बाबा ने मुरली में कहा कि तुम बलि चढ़ो, वारी जाओ, जीते जी मरो। तो हमने बाबा को कहां तक पहचाना है? बाबा ने जो यज्ञ रचा है, इतना बेहद का यज्ञ जिसमें हर जोन से हजारों भाई बहने आते हैं। दादियों ने सिर्फ ज्ञान योग नहीं कराया, परंतु इतना बेहद का यज्ञ रचकर इसकी व्यवस्थाओं को भी संभाला, इतनी जिम्मेवारियां पढ़ाई के लिए इतना बड़ा हॉल, लाइट की व्यवस्था, साउंड की व्यवस्था, वीडियो की व्यवस्था, कितनी सारी व्यवस्था करवाई। इतने बड़े भंडारे की रचना की, इतना बड़ा भंडारा रोज एक्यूरेट, सुबह 8 बजे नाश्ता मिलता है, 12 बजे लंच मिल जाता है, रात को 7:30 डिनर मिलता है, कोई आगे पीछे नहीं, इतना व्यवस्थित कैसे दादियों ने रचा, खुद संभाला और भाई बहनों को तैयार किया। इतनी जिम्मेवारियां संभालते हुए भी दादियों ने नेक्स्ट टीम भी तैयार कर दी। आज दादियां लगभग सभी एडवांस पार्टी में चली गई, परंतु आज नेक्स्ट दीदियों दादाओं की डिपार्टमेंट हेड भाई बहनों का सब संभाल रहे हैं ना, तो मधुबन शीश महल है, हमें यहां दिखाई देता है कि कैसे एक के बाद एक पीढ़ियां तैयार हो रही हैं। जो अभी की नई पीढ़ियां हैं, दादियों ने अपने बाद दीदियां, बड़ी दीदियां और दीदियां, बड़ी बहनें और दो पीढ़ी, लगभग 5 पीढ़ी यज्ञ को संभाल सके ऐसी तैयार है। 5 पीढ़ी, हम 3री पीढ़ी में आते हैं, हमारे बाद भी 2 पीढ़ी जिन्हों में ज्ञान की गहराई है, नियम मर्यादाएं हैं, दिव्य गुणों की धारणाएं हैं, बड़ों का कैसे सम्मान रखना, ये सब बातें हैं। फिर 6वीं, 7वीं, 8वीं पीढ़ी परिवर्तन के पथ पर है, ये आपको यहां दिखाई देगा। जैसे बाबा ने कहा, मैंपन नहीं, मेरापन नहीं, अपनी बुद्धि का, हुनर का, विशेषता का मैंपन नहीं, ये सब बाबा की देन है। तो ये 6, 7, 8 पीढ़ी अभी परिवर्तन के पथ पर है, और 9वीं और 10वीं पीढ़ी जो नए भाई बहने हैं, उनकी जो आईटी की कंप्यूटर की, मोबाइल चलाने की जो विशेषता है, इसको वे बाबा उसको सेवा में लगा रहे हैं। आजकल अकाउंट्स के ट्रेनिंग चलती है, गीता पाठशाला की नई नई विधि आई है, विंग्स के नए नए प्रोग्राम आए हैं। तो ये जो यंग युवा भाई बहने हैं, वे अपनी ये पढ़ाई उपयोग में ला रहे हैं। तो इस प्रकार मधुबन में सब कुछ दिखाई देता है। अगर भाई बहने जो आते हैं वो चाहें तो ये सारा ऑब्जर्व करके और अपने आप को देखें, बहुत कुछ हम सीख सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो अब हम बहुत अच्छा स्वदर्शन करेंगे, सेल्फ रियलाइजेशन करेंगे कि इस शीश महल में आकर हमें क्या क्या सीखना है। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। अपने अनादि आदि स्वरूप को देखते हुए अपने वर्तमान संगम युगी स्वरूप को देखें, कि हम अपने निज स्वरूप को आदि देवताई स्वरूप को कहां तक इमर्ज कर सके हैं। अब संगम के अंतिम स्वरूप पर हम पहुंच गए हैं। प्यारे बाप दादा ने अपना पार्ट समाप्त कर दिया है। अब खुद को ही, खुद की पढ़ाई को रिवाइज करते हुए, रियलाइज करते हुए, हर पाठ को, हर धारणा को, हर सेवा को हमें परिपक्व बनाना है। अब राइट साइड घूम जाइए, राइट साइड घूम जाइए। पहला राइट, हम अपने आदि पिता यज्ञ पिता संपूर्ण अव्यक्त कर्मातीत ब्रह्मा बाबा से अपनी तुलना करें, मुझे फॉलो फादर करना है, और ब्रह्मा बाप ने कैसे साक्षात्कार करते ही वैराग्य अपने में लाया, अपनी चल अचल संपत्ति समर्पित की, ज्ञान के मुख्य लेसन गहराई से स्टडी किए, समाज के तरफ से आने वाले विघ्नों को हिम्मत रख के पार किया, समर्पित माताओं और बहनों को तैयार किया, विश्व कल्याण के लिए इतने सेंटर खोले, तो ब्रह्मा बाबा की कौन सी विशेषता को अपने में धारण किया? बुद्धि के स्क्रीन पर ब्रह्मा बाबा के संपूर्ण स्वरूप को इमर्ज करते हुए क्या फॉलो किया है, क्या नहीं किया है, वो रियलाइज करें। और राइट साइड घूम जाइए, शिव बाबा को देखते हुए अपनी एम ऑब्जेक्ट को सामने देखते हुए अपना सतयुगी देवताई आदि स्वरूप कहाँ तक अपने में धारण किया है। श्री लक्ष्मी श्री नारायण नंबर वन विश्व महाराजा विश्व महारानी का स्वरूप पद प्राप्त किया। इस नंबर वन राज्य पद की क्या विशेषताएं हैं? संगम युगे स्वराज्य अधिकारी और भविष्य सतयुगे राज्य अधिकारी इन दोनों राज्य अधिकारी हम कितना बने हैं? और राइट साइड घूम जाएं। मधुबन शीश महल में स्वयं को देखिए। इस मधुबन भूमि से जिस अर्थ से बाबा ने इस भूमि को बनाया है मैंने उसका उपयोग कहाँ तक किया? यहाँ के रोल मॉडल दादियों से दीदियों से दादाओं से यहाँ के निवासियों से मैंने क्या क्या सीखा है? बाबा इन निवासियों को कैसे सेवा में ले रहा है और मैं इन निवासी समर्पित भाई बहनों से क्या क्या सीखते हूँ? और राइट साइड घूम जाएं। बाबा के सामने अपनी दिल की बातें करें। हम कहां तक उड़ती कला में फरिश्ते के स्वरूप में और उससे भी आगे अपनी अशरीरी निराकारी विदेही स्थिति को प्राप्त करते जा रहे हैं। तो ये पांचों ही प्रकार का रियलाइजेशन यहां जब आप एक घंटा योग में बैठेंगे तो पांचों ही प्रकार का रियलाइजेशन करेंगे। बैठ जाएं। ओम शांति।
ओम शांति। आदरणीय राजयोगिनी गीता दीदी जी ने मधुबन शीश महल इस टॉपिक पर बहुत सुंदर रूप से क्रिएटिव एक्टिविटी के साथ फोकस डाला। दीदी जी इस सभा में एक हाथ की ताली से सभी दीदी जी का आभार व्यक्त करेंगे। बहुत बहुत तहे दिल से आपका आभार है। अभी विशेष सूचना है, परम श्रद्धे रत्नमणि दादी जी की पैड ऑफिस से सूचना है, कृपया सभी टीचर्स बहनें ध्यान दें, आज शाम ट्रेनिंग सेंटर हॉल नंबर एक में वर्ष 2025 में होने वाले सेंटर सर्टिफिकेट रिन्यूअल की ट्रेनिंग दी जाएंगी। अंतर सभी टीचर्स बहनें समय पर अवश्य पहुंचना जी। समय है शाम को 7:30 बजे, स्थान है ट्रेनिंग सेंट्रल हॉल नंबर एक। फिर से पढ़ती हूँ, समय शाम को 7:30 बजे, स्थान है ट्रेनिंग सेंटर नंबर हॉल एक। नॉट, ये ट्रेनिंग 3 दिन के लिए रखी जाती है। सभी टीचर्स बहने जरूर से पहुँचेंगी। अभी हम सबके लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि भारत सरकार के साथ ब्रह्मा कुमारी संस्था का व्यसन मुक्ति के लिए एमओयू हुआ है। उसका श्रेय हमारे आदरणीय भ्राता डॉक्टर बनारसी भाई जी को जाता है। सभी एक हाथ की ताली से उनका अभिनंदन करेंगे। और साथ में अभी इसी समय पूरे भारत में व्यसन मुक्ति की बड़ी जोर शोर से ये अभियान चल रहा है, तो उसके निमित्त अभी हमारे भ्राता डॉक्टर बनारसी भाई जी प्लेस लेंगे। तो मैं हैंड ओवर करती हूँ माइक हमारे आदरणीय भ्राता डॉक्टर बनारसी भाई जी को।
थैंक यू दीदी। ओम शांति। ये मेरा सौभाग्य है, इतने ब्राह्मण दुनिया में कहां ढूंढ कर आइए, इतना ब्राह्मण कहां भी नहीं मिलेंगे। डायमंड हॉल में बैठे हैं और कौन है जिनकी महिमा स्वयं भगवान गाता है, और उनके मुख से जो निकलेगा वो सत्य होगा, मुझे विश्वास है। तो भारत को स्वर्ग बनाना है तो पहले व्यसन जाएगा तो स्वर्ग आएगा ना, तो व्यसनों को भगाना है। तो भारत सरकार को सब जगह देख लिया, कहीं उनको उम्मीद नहीं मिल रही है। हर बहुत सारी संस्थाएं काम कर रही है, 10%, 20%, 30% रिजल्ट मिलता है। ब्रह्मा कुमारी को 97% रिजल्ट मिलता है। तो इसलिए एक मिनट खड़ा हो, आपको कष्ट देंगे, खड़ा होइए और हम सब प्लेज लेंगे। भारत सरकार के सोशल जस्टिस वेलफेयर डिपार्टमेंट के साथ हमारा एमओयू हुआ है 2023 में 4 मार्च को, और आज तक 35 लाख लोगों को एजुकेट किया है। ये समाचार सुनकर के नारकोटिक डिपार्टमेंट भी, जो होम मिनिस्ट्री से रिलेटेड है, नारकोटिक डिपार्टमेंट भी बोला कि नहीं, हम ब्रह्मा कुमारी के साथ एमओयू करना चाहते हैं। तो नारकोटिक डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जनरल गर्ग साहब, वो इसी पिछले मास में 2 दिसंबर को किया, और उनके तरफ से सर्कुलर आ गया कि अपने डिस्ट्रिक्ट के बड़ी बहनों का नंबर और नाम दीजिए। अब हम पहले कलेक्टर, एसपी, डीएसपी, कमिश्नर के पास जाते थे, अब वो सब आएंगे ब्रह्मा कुमारी आश्रम में कि हम मिल करके सेवा करें। और हमारे जीजीआरसी के तरफ से गाड़ी बनी है जिसका लॉन्चिंग हमारे चीफ मिनिस्टर, आप लोग जाएंगे और होगा, और पूरे गुजरात में घर घर तक जाएगा। तो हम उसके लिए एक प्लेज लेंगे। और दूसरा एक और आपको समाचार सुना दें कि कल क्लास के बाद कॉन्फ्रेंस हॉल से एवर हेल्दी तक प्रोसेशन निकलेगा। माताओं से, भाइयों से नम्र निवेदन है कि नाश्ते पर इस रास्ते से न जा करके ये कॉन्फ्रेंस हॉल के रास्ते से जाएंगे तो आपका जाना एक सेवा होगा। भारत सरकार को पता लगेगा 18-20 हजार ये होली हंस जब लाइन में लगेंगे, दुनिया की आंखें खुलेगी। तो हम एक प्लेज लेते हैं। ओम शांति। मैं बाप दादा दादियों के सामने प्रतिज्ञा करता हूँ कि अपनी तपस्या से, करुणा से, दया से, पवित्रता से, धारणा से भारत को व्यसन मुक्त बनाएंगे। सरकार के नियमों का पालन करेंगे, पर्यावरण का सुरक्षा करेंगे, एक पेड़ लगाएंगे, मेरा भारत व्यसन मुक्त भारत, मेरा गुजरात व्यसन मुक्त गुजरात। ओम शांति। थैंक यू। अब बैठ जाएं और कल याद जरूर रखिए, क्लास के बाद उस रोड पर कॉन्फ्रेंस हॉल के सामने से वहाँ बाबा का फ्लैग लेना है, बैनर लेना है, स्लोगन लेना है, और पावरफुल हम योग करें ताकि हमारा भारत, हमारा गुजरात हर प्रकार से मुक्त हो जाए व्यसनों से।